से ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग, सत गुरु बाबा कहे कि जब तुम ज्ञान मार्ग में आते हो तो तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप ही देता हूं। भक्ति मार्ग में तो बहुत मांगते ही रहते थे, या तो कोई वस्तु मांगेंगे या तो कोई गुण मांगेंगे, ज्ञान भी मांगेंगे, रहम करो ये भी मांगेंगे, तरस खाओ ये भी कहेंगे, दया करो तो मांगते ही रहते हैं, माफ करो। अब भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं ये भी नहीं मांगो, लेकिन अपने ऊपर खुद रहम करो, खुद अपने ऊपर तरस खाओ, खुद अपने ऊपर आशीर्वाद करो। और उसका साधन क्या है, क्या तरीका है, जो मैं श्री मत देता हूं उस पर चलो, मुझ में निश्चय रखो, मैं जो कहता हूं वो करो, खाली मांगो नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यही सबसे बड़ा अंतर है। आज बाबा ने ड्रामा को भी कैसे साक्षी होकर के देखो ये भी बहुत समझाया। पूछो नहीं, प्रश्न नहीं करो, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों नहीं, ये सब ड्रामा है। इस समय ड्रामा में कौन सा सीन चल रहा है, कोई भी सीन एक बार आती है दोबारा नहीं आती है ड्रामा में। तो इस समय कौन सी सीन चल रही है, दुख की सीन। तो इस दुख की सीन को भी साक्षी होकर देखो, पर ये सीन भी जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई भी चीज स्थाई नहीं है, इसलिए इसको बाबा कहते हैं ड्रामा, इसको बाबा कहते हैं चक्र। चक्र सदा चलता ही रहता है, ठहरता नहीं है। एक इंग्लिश में एक होता है सर्कल, गोलाकार, और दूसरा होता है साइकिल। तो साइकिल जब कहते हैं तो वो चलता ही रहता है, साइकिल तो चलती रहती है ना। सर्कल तो एक बार किया पूरा हुआ, सर्कल हो गया, लेकिन साइकिल माना सदा गोल घूमते रहना। तो ये केवल सर्कल नहीं है, एक बार हुआ और खत्म, लेकिन साइकिल है। जो भी कल पहले हुआ था वही रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब नया नहीं है परंतु अभी हमको पता नहीं है क्या आना है, तो हमें तो पुरुषार्थ करना ही है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो होगा वो हमें मंजूर है, नहीं, हमें अपना ड्रामा बनाना है। तो बाबा ने आज इन दो विशेष बातों पर बहुत ध्यान खिंचवाया। तो सुनते बाबा के महावाक्य आज 24/7/2025 है। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो, क्या चल रहा है इस समय ड्रामा में, कौन सी सीन चल रही है, तो साक्षी होकर हाँ कैसे क्या देख रहे हो। उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो भी अल्पकाल कागविष्ठा के समान है। बहुत धन है, बहुत मान है, बहुत बड़ा पद है तो बहुत प्राप्ति है, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब अल्पकाल का है, बाकी तो दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड, एक एक पल जैसे बीतता जाता, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, हर एक की एक्ट, जो भी वो कर रहे हैं वो दूसरी घड़ी वो बदल जाती है, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। डबल ओम शांति, बाबा डबल ओम शांति भी कई बार कहते थे। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं और दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको। दोनों ही ओम शांति कहते हैं, शिव बाप और ब्रह्मा बाबा, क्योंकि दोनों ही अपने स्वधर्म में टिके हुए हैं। तो बच्चों को भी यही कहते हैं कि बच्चे तुम भी अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको, आत्मा का स्वधर्म शांति है, उस स्वधर्म में टिको, ये बाबा कहते कोई नहीं कह सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे, जिनको निश्चय होगा वही विजय पाएंगे। बाप के वर्षे की, कौन सी विजय? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे तो, लेकिन पद के लिए तो पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, बच्चे जानते हैं ये छी छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाला है। अभी तो है दुख, बहुत है, अब और भी बहुत बहुत दुख आने वाला है। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए, सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने। अनेक बार हर कल्प कल्प आते हैं, कैसे क्या करते हैं, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने आते हैं। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, सब बच्चों को ले जाएंगे, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे, सबको ले जाएंगे बाबा। तो तुम बच्चों को ये तो खुशी रहनी चाहिए, कौन सी खुशी, कि इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम में जाएंगे वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलना नहीं चाहिए। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय भी बताते हैं। कौन सा है पावन बनने का सहज उपाय? बाबा की याद सबसे सहज उपाय है पावन बनने का। ये भी नई बात नहीं है, बाबा की याद में रहना, पावन बनना इस याद के बल से, बाबा कहते ये भी नई बात नहीं है। लिखा हुआ है कि भगवान ने राजयोग सिखाया, तो राजयोग का अर्थ ही है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो इसीलिए भगवान ने यही सिखाया, मुझे याद करो। भगवान ने राजयोग सिखाया ये नई बात नहीं है, सिर्फ भूल ये कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं कि बच्चों को जो मिल रही है, जो नॉलेज मिल रही है वो गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। गीता में है कई बातें जो बाबा में समझाते, आटे में नमक है ज्ञान, परंतु और कोई शास्त्रों में नहीं है। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे, क्योंकि सृष्टि का चक्र फिरता ही तब है जब बाप आते हैं। माना बाप आकर के फिर से नया सतयुग रचते हैं, तो बाप ना आए तो चक्र फिरे कैसे, वहीं रुक जाए। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के, सबको ले जाने फिर चक्र फिरता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। अब चक्र फिरना है, कलयुग से सतयुग को आना है, तो जरूर बाप को भी आना पड़े, तब तो कलयुग से सतयुग आएगा। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया, समझो भगवान आते हैं और ये लोग समझ जाए कि भगवान आबू में आया है, तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापिस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख होता है। अथाह माना अथाह, कोई लिमिट नहीं सुख की, वहां अथाह सुख होता है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही है ब्रह्मा द्वारा, ये तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी यह है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। भगवान हमें कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी देगा, विश्व की भाषा ही देगा, तो इसमें संशय की भी कोई बात नहीं है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इसका नाम है भारत, फिर तुम नरक में आते हो तो फिर इसका नाम पड़ जाता हिंदुस्तान, स्थान के नाम पर देश का नाम पड़ जाता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है, फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तो बाप खुद कहते हैं कि अभी है अंधियारी रात। रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, तुम बच्चे रोशनी में हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहते हैं ना, तो हम अंधियारे से हमें उजाले में ले जाओ, तो बाबा कहते अभी तुम रोशनी में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। ये भी साक्षी हो बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे दिन से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन, टोटल दुख की सीन है इस समय। अगर सुख है तो भी काग विष्टा के समान, बाकी तो दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर, याद है ना, अपना घर, हम जाते हैं अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। घर तो जाते हैं लेकिन घर में कैसे जाएंगे पावन बनकर, तो मेहनत तो वही करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, क्या देंगे, बैरिस्टर मत, वो भी मत देते हैं, हर एक मत देता है, तो बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। वो पढ़ाई वही पढ़ाएंगे जिससे उसका वो स्टूडेंट बैरिस्टर बने, तो कहेंगे बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्री मत से ये बनो, श्री बनो, लक्ष्मी नारायण बनो। अब तो अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। हर एक अपने से पूछे मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में को गुण नहीं। खुद ही कहते हैं भक्ति मार्ग में, मैं निर्गुण हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, आपे ही तरस परोए, आप ही तरस खाओ, दुखियों पे रहम करो, माँ बाप हमारे आप सुख दो। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर तुम ही आशीर्वाद करो, बाबा नहीं देते, देखो बाबा क्या कहते। तो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, तरस अर्थात रहम। अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो किसी पर भी रहम करता ही नहीं हूँ, आप अपने आप ही खुद पर रहम करते हो, मैं नहीं करता, जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ना, ऐसे नहीं कि मैं रहम करता हूँ और तुम्हारा वो जो गलत कर्म किया उसका फल मिट जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तो रहम करता ही नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। कैसे करेंगे अपने पर रहम, हर घड़ी सावधान रहना है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ, वो तो खुद पर खुद ही ध्यान देना है ना। तो हर एक को अपने पर आपे ही रहम करना है, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, मैं तो हूँ ही रहम का सागर, परंतु मैं सिखाता हूँ कैसे अपने ऊपर रहम करो, मैं तो कर्म करता नहीं हूँ। पर बेरहमी किस कैसे बने, रावण ने बनाया। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। आज बाबा ने कहा रावण का भी दोष नहीं है, सब खेल है ना, तो खेल में रावण का भी अपना पार्ट है, होता है ना, कोई प्ले होती है, कोई भी खेल होता है, ड्रामा होता है, उसमें विलियन तो आता ही है, खलनायक तो होता ही है, नायक भी होगा तो खलनायक भी होगा। अब इसमें भी रावण का भी कोई दोष नहीं, बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, श्रीमत देना माना राय देते हैं, बच्चे ऐसे करो, यही उनका रहम है, वो राय देना मेहर, यही उनका रहम है, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, फिर अगले कल्प में आएगा, इस कल्प में आया है तो अगले कल्प में भी आएगा, फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, तो न रावण का दोष न मनुष्यों का दोष, हमारा भी दोष नहीं है, तो किसका दोष है, ड्रामा, हाँ कहेंगे ना ड्रामा ड्रामा, पर ड्रामा का भी क्या दोष, सब अनादि अविनाशी है, तो किसी का भी दोष नहीं है। चक्र को तो फिरना ही है, रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना, सत्युग को फिर जरूर आना है, अविश्यम भावी है। ऐसे हो नहीं सकता कि सत्युग ना आए और ऐसा ही कलयुग चले, नहीं, अवश्य आएगा सत्युग। अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि विनश्यंती, यह होना ही है, विनाश का काल चल रहा है, बुद्धि विनाश के समय पर विनश्यंती होती है, यह होना ही है। और हम कौन, विनाश काले कौन, हम विनाश काले विजयंती, और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है वो तो स्वर्ग में होंगे ही नहीं। ये भी समझते हो कि पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है, मेहनत करेंगे ही नहीं पवित्र होने की और सोचे ऐसे ही देवता बन जाएं, बाबा कहते हैं मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सके, देवता बनने की मत कोई दे नहीं सकता है, भगवान ही देते हैं, कैसे तो मनुष्य से देवता बनो, ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका ही पाठ है और वो भी संगम पर ही। एक तो ये पाठ श्रीमत देने का भगवान का ही है और दूसरा केवल इसी समय वो कार्य करते हैं, सारे कल्प में फिर नहीं करते। तो श्रीमत देने का, बाबा कहते श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर, और कोई में तो ये ज्ञानी नहीं है, भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, भक्ति में तो मांगते रहते हैं और ज्ञान में मांगते नहीं है, लेकिन अपने ऊपर खुद ही आशीर्वाद करते हैं। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर सुख का सागर। तो बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते, पुरुषार्थ कराते हैं, युक्तियां बताते हैं, ये ख्याल रखना चाहिए। हाँ, क्या ख्याल सदा रखो कि अभी अगर हम फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी, श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है, नहीं चलेंगे श्रीमत पर तो जरूर गिरेंगे, तो जरूर चोट लगेगी। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा, कितना, क्या है लिमिट, ब्राह्मणों का झाड़ की लिमिट कितनी है, बाबा कहते जितना देवताओं का झाड़ है, देवताओं का जितना झाड़ है, कितना, 33 करोड़, त्रेता के अंत तक 33 करोड़, तो इतना बन जाएंगे, भले थोड़ा कना दाना भी मिला, बाबा कहा तो जरूर आएगा स्वर्ग में। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना है और कराना है, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा होता जाएगा, हो रहा है ना, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है, कैसे कल्याण होता है, जब हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हैं, यही कल्याण है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना, अभी तुम समझ रहे हो परंतु आगे चल क्या देखना, किस किस का ताला खुलता जाता है, जिनके ताले अभी बंद है धीरे धीरे उनका ताला भी खुलता जाएगा, ये भी ड्रामा चलता है। फिर सत्युग से रिपीट होगा, लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब क्या होता है, हा? तब संवत शुरू होता है 111। ये संवत कब शुरू होता है? जब लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठते हैं। तुम लिखते भी हो 1 से 1250, 1 से 1250 तक, वर्ष तक स्वर्ग, कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की भी है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। अमरनाथ अभी बाबा देव सुनाते हैं, फिर उसका गायन चलता है भक्ति में। त्योहार आदि सब इस समय के, हाँ, सत्यनारायण की कथा भी सत्यनारायण की कथा नहीं है, लेकिन है तो दूसरों की कथा। जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी तो माला माल हो गए, नहीं सुनी तो कंगाल हो गए। अब अमर कथा भी ऐसे ही है। अब अमर कथा कौन सी सुनाई वो तो बताते नहीं, बस इतनी सुनाते हैं कि पार्वती को नींद आ गई, कबूतर ने सुन ली कथा और फिर वो अमर बन गए कबूतर। लेकिन कथा कौन सी थी अमर कथा वो तो बताते नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो तो उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि भी सब इस समय के ही है। ये जो कथाएं हैं वो भी बाबा कहते इस समय की है। नंबर 1 पर्व कौन सा है? शिव जयंती। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे तो कितना पूरा हिसाब बना हुआ है, पूरा हिसाब है। ऐसे नहीं कुछ कुछ यहाँ कुछ वहां नहीं, सब हिसाब बिल्कुल एक्यूरेट है। तुमको ये खातरी है, कौन सी खातरी हम बच्चों को है कि जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे जरूर। साक्षी हो औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, औरों का भी देखते रहते हैं क्यों ऐसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये प्रश्न ही नहीं साक्षी होकर देख रहे हैं। और अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? हर एक अपने आप को समझ सकता है मैं कहाँ तक पढ़ाई कर रहा हूँ, कहाँ किस लेवल पर पहुंचा हूँ। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे क्या होता है उनको, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है और एग्जाम पेपर सामने आ जाता है और पढ़ा है नहीं, तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट को, उसकी दिल धड़कती रहेगी, हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की, नींद ही फिट जाती है ना, दिल धड़कती, हाई बीपी हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो बाबा कहते इम्तिहान के टाइम जो बच्चे होंगे, जो कच्चे होंगे, उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, पता चल जाएगा कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, पेपर कैसा दे रहे हैं। परंतु नापास तो हो ही गए, पढ़ाई की नहीं तो जरूर नापास होंगे, फिर कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। स्कूल में नापास होते हैं तो क्या होता है, सब स्टूडेंट्स पढ़ाई तो की होगी ना स्कूल कॉलेज में, तो अगर नापास हो गए, फेल हो गए तो क्या होता है, तो सब नाराज हो जाते हैं, तो फेल हो गया। हाँ, बाप तो पहले कहेगा इतना मेरा मैंने धन खर्च किया तुम्हारे ऊपर, तुम फेल हो गया। माँ कहेगी तुम मेरा भी कितना तुम समय बर्बाद किया, मतलब सब मित्र संबंधी सब नाराज हो जाते हैं, टीचर भी नाराज हो जाता क्योंकि इस पढ़ाई स्कूल या कॉलेज का नाम बदनाम हुआ। तो बाबा कहते हैं स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे वो क्या कहेगा, टीचर कहेगा हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझ जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा भी कैसे, कि टीचर अच्छा नहीं है। तो टीचर अच्छा नहीं इसीलिए कम पास हुए। बाप भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छे टीचर है और कैसे पढ़ाते हैं, टीचर भी कैसी है तो कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है बाबा के पास। बाबा टेस्ट लेते हैं ना उनकी, तो बाबा पता चल जाता है कि टीचर ने इनको कितना पढ़ाया है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं बादलों को लाना है, कौन से बच्चों को मधुबन लाना है, बादलों को लाना है जिनमें ज्ञान की वर्षा खूब है, तो वो जहां भी जाए जाके ज्ञान बरसाए। अगर ऐसे होंगे जिनको अभी ज्ञान पता ही नहीं है वो क्या करेंगे, संशय उठाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं बादलों को लाना, फिर और क्या बाबा कहते हैं, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें तो मोह रहेगा, छोटा बच्चे छोटे बच्चे को लाएंगे तो क्या होगा, माँ सेवा करेगी या बच्चे का सोचेगी, बच्चा कहाँ चला गया कहाँ चला गया, हाँ पता नहीं कहाँ चला जाए, तो वो बच्चे के पीछे पीछे दौड़ेगी, सेवा क्या करेगी। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे बच्चों को मत ले आओ, छोटे बच्चों को नहीं ले आओ, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए। कई माताओं को कहते ना छोटे बच्चों को क्यों ले आए, तो कहते क्या करे घर में कोई नहीं, फिर तो वो आपको ही संभालना है, थोड़ा तो देखना होता है ना, छोटे बच्चे को लाएंगे या क्या फायदा लेंगे, मधुबन का कुछ भी फायदा नहीं लेंगे। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। हाँ अभी भट्ठी में भी आते हैं तो कोई छोटे बच्चे को ले आएगा तो क्या भट्ठी करेगा, है ना। देखो हम देखते हैं अभी आजकल बच्चों को नहीं लाते है, हेल्प कोई लाए है क्या भट्ठी वाले बच्चों को, नहीं कोई नहीं लाए। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते, बच्चे में मोह है तो इसलिए ले आते, पर बच्चों को तो वहां भी घर में भी देखते रहते हो, तो चलो अभी यहाँ आए हो तो अपने लिए आप आए हो, अकेला बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हो। तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान के तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, भाई नया मकान बन रहा है तो मैं ऐसे चुप होकर बैठ जाऊं, नहीं धंधा नौकरी सब करते हैं पुराने में रह करके कि बन रहा है नया मकान, हमारा नया मकान बन रहा है तो धंधा आदि भी करते रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है, चुप करके तो नहीं बैठ जाते हैं। ये है हद की बात और वो है हद की बात और ये है बेहद की बात, नई दुनिया हमारे लिए बन रही है परंतु काम धंधा तो करते रहेंगे ना जब तक नई दुनिया आए। हर कार्य करते हुए स्मृति में रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक ये तीन है ना जिम्मेदारी तीनों ही है, तो लौकिक बच्चों की भी संभाल करनी है परंतु बुद्धि वहां लगी रहे, बेहद में लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते, याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई, याद से पवित्र बनते हैं और ज्ञान से पढ़ाई पढ़ते हैं तो धनवान बनते हैं, तो ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है पतित, दो किनारे हैं, एक तरफ है पतित दुनिया दूसरी तरफ है पावन दुनिया, तो दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, नहीं हाँ मेरी नैया पार कर लो प्रभु, तो खिवैया समझते हैं लेकिन कौन सी नैया और फिर कौन से किनारे से कौन से किनारे ले जाते हैं वो बाबा कहते नहीं जानते, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, किस किनारे? नई दुनिया की किनारे। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं, बाबा के बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना, ये सब महिमा करते हैं। नैया मेरी पार लगाओ प्रभु, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? वहां देवताएं कहेंगे मेरी नैया पार लगाओ, तो नैया पार हो गई है ना, पार कर ली है। तो सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो बेसमझ को तो ये यहाँ आना नहीं है। हाँ, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है, और ना टीचर उनको ले आवे। जब तक पूरा ज्ञान स्टडी नहीं किया है तब तक नहीं लाना है मधुबन में। बाप की सख्त मना है, सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। अब ये साकार बाबा के समय की बात है, बाबा के सामने तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, पर अभी तो बेहद हो गया है तो अभी आते हैं विजिट करने आते हैं। अभी तो जानबूझ के ले आते हैं नयों को, ताकि यहाँ से समझ करके जाए। परंतु बाबा के समय तो ये सब ऐसे था ही नहीं, जो योग शिविर हो या कोई मेले हो उस प्रकार से हो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है, बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है, कई ऐसे होते 2 दिन में इतना समझ लेते हैं, जो कईयों को समझाने भी लग जाते हैं, ऐसे तीर लग जाते हैं। 2 रोज में भी 3 तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, अच्छा लगा उनको, तीर लग गया अच्छा तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे कि ये स्कूल का है। उनको कहते हैं ना बस 2 दिन आओ या 3 दिन आओ, 3 दिन आएंगे कहेंगे अभी हम छोड़ेंगे तो भी हमको और सुनाओ और सुनाओ, तो समझ जाना चाहिए कि वो स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी फिर दूसरी मिलेगी, आना है यहाँ तो फिर परवाह थोड़ी करेंगे, चलो एक नौकरी छूटी और दूसरी मिल जाएगी। हमने तो देखा कई जो आईटी वाले होते ना, वो आईटी वालों को कोई चिंता नहीं होती है, जहाँ तनख्वाह ज्यादा मिलेगी वहाँ चले जाएंगे, पहली नौकरी छोड़ देंगे। कहते कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, फलाने कंपनी को छोड़ा तो हम कहते आप नौकरी छोड़ के आए हो, कहा कोई बात नहीं दूसरी मिल जाएगी। पर दूसरी जो नौकरी वाले होते हैं ना, उनको तो डर रहता है पता नहीं दूसरी नौकरी मिलेगा नहीं, मिलेगी या नहीं। आईटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम, हाँ तो बाबा कहते हैं कि एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है, इतना निश्चय होता है उनको कि नहीं मेरी नौकरी नहीं छूटेगी। हाँ, क्योंकि पता है कि वो ऑनेस्ट है तो उनका बॉस उनको कभी ऐसे छोड़ेगा नहीं, उसको छुट्टी दे देगा। उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं, हाँ मेरा बॉस का मेरे पर कितना विश्वास है। बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि फेरो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा को कहते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। सभी के लिए बाबा बुद्धि के ताला फेर देगा, सब स्वर्ग का राजा बन जाएंगे, ऐसे तो बाबा नहीं करेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, और अब याद में रहना है तो बुद्धि का ताला खुलेगा। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रसम निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, कोई नई आत्मा आई और वो गुरु बन गई, मतलब है वो नई आत्मा, तो बहुत उनके पास जाते हैं, बुद्धि कैसे उनकी फिर जाती है उस नए आत्मा के प्रति, उनकी भावना बैठ जाती है, तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। हाँ, कई कहते हैं ना कि वो फलानी संस्था में तो कितने लोग जाते हैं, यहाँ इतने कम क्यों, भाई जितने देवताएं बनने होंगे वही आएंगे ना, और थोड़े आएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को। क्या करना, अपने को देखना है, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो, पर खास आते हैं बाबा से मिलने के लिए, ये यहाँ मिलन मनाने आते हैं हम, तो इसीलिए यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग है ना। अब घर बैठे भी मुरली तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मधुबन में आना, शक्ति भरना, सेंटर पर जाना, वहाँ मुरली सुनना, तो वातावरण का असर होता है, बाबा का कमरा इतना पावरफुल होता है तो उससे शक्ति लेते हैं। बाकी तो घर में बैठे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आजकल तो मुरली मिलना तो बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना, रोज ज्ञान हमें मिलता है। ये है मुख्य बात, मन मनाभव, साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो अब इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, दिखाते ना विष्णु की, विष्णु जी शेष नाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, कमल फूल पर ब्रह्मा बैठा हुआ है, हाथ में शास्त्र है। तो बाबा कहते हैं फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, बाहर जाकर करो बहन। तो बाबा कहते हैं बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। हाँ, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं, कितना मनोमय बनाते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं। गांधी जी लेटे हुए, गांधी जी की नाभि से नेहरू निकला, फिर नेहरू की नाभि से फिर शास्त्री जी निकला, फिर इंदिरा गांधी निकली, मतलब ऐसे भी कई चित्र बनाते हैं मनोमय। तो बाबा कहते हैं कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मते है ना, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है, बाप बेहद की बात समझाते हैं। फिर सारी दुनिया में है, बेहद की बात क्या है कि सारी दुनिया में है रावण राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते हैं, पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके, ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो, हाँ बाबा कहते तूफान तो आएंगे, बाप समझाते बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो, पश्चाताप करना माना रोते नहीं रहना, लेकिन मैं ये भूल फिर नहीं करूंगा करूंगी। बाबा कहते हैं ये जैसे अपने आप को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, सुना? ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। हर एक को अपने कर्म का फल मिलता ही है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, अपने ऊपर क्षमा करना है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में, आओ हम पतित को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं है। आप बुलाते हैं हम, इसका मतलब कि पतित हैं तो इसलिए बुलाते हैं, फिर कह देते हैं हाँ, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम वो ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही है। हर एक नंबर वार करता है तो तकदीर उतनी है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्यों घाटा नहीं डालना चाहिए? क्योंकि अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो, क्योंकि यही समय है जमा होने का। फिर जैसे ही सतयुग में गए, धीरे 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 घाटा ही शुरू होता है, फिर वहां जमा करने का कोई तरीका नहीं, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में तो कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले बच्चे सच्चे रहम दिल भव। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है, खुद ही अपना कल्याण कर रही है। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा का पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है, नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, इस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। क्या होगा लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन? सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो गए। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात न आए, ऐसे नहीं ये कर लूं, ये देख लूं, ये हुआ या नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। क्यों क्यों ये कहा तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। आज 24 तारीख दीदी की विशेषता, अपकारी पर भी उपकार की भावना रखी। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदल लो, इसी में ही भलाई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो अभी बाबा को भोग लगेगा। आज सतगुरुवार है, शशि बहन आ गई। ओम शांति। आज हम सब के लिए बहुत ही प्यारा दिवस है और आज के दिन बाबा का हर बच्चा हर समय बाबा और बाबा के ही प्यार में खोए रहते हैं और हर एक को लगता है हम बाबा के पास हैं और बाबा भी बच्चों को वतन में बुला करके हर तरह से भरपूर करते हैं और आज के दिन हम सब मिलकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे। अच्छा, जो वतन में जाएंगे वो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। और दूसरा हम देख रहे हैं शांतिवन में टीचर्स की भट्टी थी। शांतिवन में टीचर्स की भट्टी थी और जो टीचर्स मैंने एक रात के लिए आई वो हाथ खड़ा करे। देखिए बहुत अच्छी इनकी भट्टी रही और बहुत अच्छा रहा और अच्छे अच्छे अनुभव किए और मधुबन में आना जो भट्टी में अनुभव किए हैं उसको छाप लगाना है, तो छाप लगाने के लिए आए ना। तो यहाँ पर छाप लगाने के लिए आए हैं, बाबा से वायदा करने के लिए आए हैं और बाबा और भरपूर करने के लिए सब बच्चों को सदा स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है, स्वागत है। और फिर जोर से ताली बजाओ टीचर्स बहनों के लिए। बाबा देखते हैं कितनी लाडली हैं, कितनी प्यार से सेवा करती हैं और बाबा भी हर समय बच्चों को भरपूर करते हैं, तो इसलिए अभी हम सब मिलकर के बाबा के पास जाएंगे, वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन टीचर्स बहनों की यहाँ भाइयों की तरफ होगी और भाइयों की लाइन उस तरफ कॉर्नर में होगी और बाकी बट्टी की बहनें यहाँ इस कैमरा के पास लाइन लगाएंगी और बाकी बहनें जो है दो लाइनें होंगी उस साइड में अमृत पीने के लिए। फिर से आपको बता रहे हैं कि जो भी बट्टी के निमित्त आए हैं या अन्य भट्टी वन जो शांतिवन से एक रात के लिए आए हैं या अन्य स्थानों से आए हैं, सबका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। नीचे बैठने और खड़े होने की जगह नहीं है, इसलिए सबको नाश्ता जो है ऊपर के डाइनिंग हॉल में ही करना है, नीचे कोई लाइन ना लगाए। बाबा हमेशा कहते हैं जैसा समय वैसा अपने आप को चलाना होता है, तो इसलिए इस बात का सबको ध्यान रखना है। फिर से बता रहे हैं अब हम सब चलेंगे कहाँ पर, बोलो कहाँ जाएंगे, बाबा के पास कहाँ पर, वतन में, बोलो वतन में जाएंगे और बाबा से हर एक अपनी मीठी मीठी बातें करेंगे और बाबा देखेंगे कि कौन कौन बच्चे बाबा के पास पहुंचे। किसी का कोई भी संकल्प हो और किसी ने किसी के निमित्त जो भोग लगाया है वह भी उस समय बाबा के पास रख देना और बाबा उसका जवाब आपको आप ही दे देंगे। अच्छा अभी हम चलते हैं बाबा के पास। फिर से बता रही हूँ, एक लाइन अमृत के लिए भाइयों की उस साइड होगी, टीचर्स बहने अमृत पीने के लिए भाइयों की तरफ सामने की तरफ आएंगी और भट्टी की बहनें यहाँ जो दूसरा कैमरा है उस तरफ होंगी और अन्य बहनें जो है दो लाइन में होंगी जिनको अमृत पिलाया जाएगा। और सबसे हमारा निवेदन रहेगा लाइन में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, कोई भी सब इकट्ठे खड़े नहीं हो जाए, पांच मिनट में सबको अमृत मिल ही जाता है, तो इसलिए कोई आकर के गोल गोल लाइन नहीं बनाए। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइन बनाते हैं, लेकिन माताओं को बहुत उमंग रहता है, वो बाबा को जैसे घेर लेती है ना, अमृत के लिए भी यहाँ झुंड बना देते हैं, तो यहाँ झुंड नहीं बनाना है, लाइन में आकर के अमृत पीना है। इसलिए जो झुंड बनाएगा उसको हम पीछे बिठा देंगे, उसको सबसे लास्ट में अमृत मिलेगा, इसलिए सबको ध्यान रखना है। अच्छा ओम शांति।
होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
जो भी माताएं बहनें उठ रही हैं, आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हम सभी प्यारे बाप दादा का संदेश सुनेंगे, उसके बाद सभी को यहां पर अमृत मिलेगा।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की याद पर लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे पहले से ही थे और बाबा एक एक को बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है और दूसरी तरफ बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा था। बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे जिसका जो मन करता है चाहे तो बगीचे में जाए चाहे तो जंगल की तरफ जाए। तो सब बच्चे बगीचे की ओर जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू लेते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन देखा कि बहुत थोड़े ऐसे बच्चे थे जो जंगल की ओर गए, और जैसे वो जंगल की ओर गए और जहाँ कदम रखते थे वहाँ पर और बहुत सुंदर बगीचा बनता जा रहा था। धीरे धीरे वो सारा जंगल एक बहुत सुंदर बगीचा बना और उसकी खुशबू भी इतनी प्यारी सी आ रही थी और बाबा मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची देखा कि ये जो जंगल है इसको फूलों का बगीचा बनाने का कार्य किसने किया है? बाप के साथ जो यज्ञ के आधार मूर्त हैं उन्होंने जंगल को बगीचे के रूप में परिवर्तित किया और जंगल के अंदर कांटे कई प्रकार के भयानक रूप थे और जंगल के अंदर कई प्रकार के जानवरों की आवाज भी थी और उस आवाज को भी शांत किया, कांटों को फूल बनाया और जंगल को मंगल बनाया है। आज जो फूलों को बगीचा देख रहे हैं ये सारी मेहनत, त्याग, तपस्या, निश्चय और बाप के साथी बनकर के इस कार्य को साकार किया है। लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनका भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि आते ही उनको फूलों के बगीचे में आने का मौका और फूलों के बगीचे में ही बच्चों को अनेक प्रकार के अनुभव करने का मौका मिला है। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, हर एक बच्चा क्या करता था, जो फूलों के बगीचे में पहले से खड़े थे वो ऐसे हो जाते थे, वो कहता ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा है। बाबा ने कहा, अभी कई कई बच्चे ऐसे हैं मैंपन के कारण कि मैंने ही किया, मैंने सेवा बढ़ाई। बाबा ने कहा ये कार्य बाप का कार्य है और जो फाउंडेशन में जो निमित्त रहे उनका कार्य है और अभी भी बाबा जो है इस कार्य को इन प्यारे बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान देना है कि जैसे फाउंडेशन के अंदर जो आदि रतन थे, एक मत, एक भरोसा, एक बाप, एक श्रीमत का ही आधार लेकर के यूनिटी बनाकर के चलते रहे, आज जिस कारण से सारे विश्व के अंदर बाप का नाम प्रत्यक्ष हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि बाप भी क्या चाहते हैं, बीच बीच के अंदर जब बगीचे में माया के तूफान आते हैं वो है मेरापन और अहम भाव। तो जैसे वो मेरापन अहम भाव की फीलिंग आती थी, जो खिले खिले फूल होते थे वो धीरे धीरे जैसे उसकी खुशबू भी कम और साथ साथ वो फूलों के अंदर जैसे मुरझाहट आने लगी, तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप ने ऐसा कार्य दिया है माली बनाकर के कि फूलों का एक भी पत्ता मुरझाट की ओर न जाए, उसके लिए बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है। बाबा ही करण करावनहार है और बच्चे निमित हैं और निमित भाव से हर कार्य सहज हो जाएगा। तो जैसे बच्चों ने ये ध्यान रखा कि निमित भाव है और बाबा करा रहा है, उस समय जो मुरझाए हुए फूल थे वो भी सब के सब एकदम सुंदर एकत्रित हो गए। तो बाबा ने कहा यही बच्चों की जो एक मत एक श्रीमत पालन करने का कार्य कर रहे हैं, यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है। जिसको फिर थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, कुछ साइंटिस्ट हैं, वो बगीचे को देख रहे हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, वो जंगल वाले स्थान पर जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये ऐसा कार्य तो दुनिया में कौन कर सकता है। फिर उनको जैसे अनुभूति होती है कोई ईश्वरीय शक्ति ही ये कार्य कर रही है। तो बाबा ने कहा साइंटिस्ट हैं चाहे दुनिया वाले हैं, बाप के इस कार्य को धीरे धीरे पहचानने लगे हैं और समय आएगा वो एक बार इस कार्य को पहचानेंगे और उसका भी खुद लाभ लेंगे। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को उस बगीचे से एक कमल का फूल और एक गुलाब का फूल और दो चार और फूल थे वो तोड़ करके हर बच्चे को दिया। और बाबा ने कहा कि जैसे कमल का फूल जैसे बाबा ने दिया उसमें वो नहीं था, उस कमल के फूल के अंदर बहुत ज्यादा चमक दिखाई दे रही थी और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा बाप ने जो बच्चों को ये फूल दिया है केवल फूल नहीं है, बाप ने हर बच्चे के अंदर विशेषताएं भरी हैं, शक्ति दी है और हर बच्चा उन विशेषताओं और शक्ति से ही अपने को संपन्न और विश्व को साकाश देने की और विश्व को कुछ न कुछ वरदान देने की सेवा कर रहा है और भी करना है। फिर जैसे बाबा ने गुलाब का फूल दिया, वो गुलाब का फूल ऐसा नहीं था जो यहाँ होता है, वो बहुत सुंदर था, उसकी खुशबू में कई प्रकार की खुशबू अलग अलग प्रकार से आ रही थी। बाबा ने कहा ये सब के सब मेरे गुलगुल बच्चे हैं और बाप तो हर समय हर बच्चे को गुलाब के रूप में ही देखता है, बच्चा कोई कुछ भी हो लेकिन बाबा हर बच्चे को गुलाब के रूप में देखता है। फिर बाबा ने दो तीन और फूल दिखाए, बाबा ने कहा देखो ऊपर से फूल में कुछ ऐसा सुंदर नहीं लग रहा लेकिन उसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत प्यारी सी है और हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। तो बाप का हर बच्चा बाप का लाडला है और हर बच्चे के अंदर बाप ने जो विशेष गुण भरे हैं उस बच्चे गुण से ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने जैसे सबको वो फूल दिए तो हाथ में फूल लेकर के सब बच्चे ऐसे खड़े थे, हर एक के हाथ में गुलदस्ता रूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा सदा यही ध्यान रखना है कि हम बाबा की बगिया के सुंदर फूल गुलदस्ते हैं और सदा ही ऐसे महकते रहना है और इन महकते फूलों को देखकर सारे विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का डंका भी बजेगा। फिर बाबा ने बहुत प्यार कर रहे थे, बाबा ने सबको याद प्यार दिया और फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद जिनके भोग थे बाबा ने उनको इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए हर एक को दृष्टि दे रहे थे और उस दृष्टि से उनको भी कुछ न कुछ अनुभूति हो रही थी। ओम शांति।